उसके बारे में हम बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजीज़, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, द एज ऑफ ऑनसेट, द फैक्टर्स विच कॉजेज द एक्सेसिवेशन ऑफ द डिजीज़ एंड दैट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द साइट। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के लिए हम जो है ना इसको डिवाइड करते हैं इनटू क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोराइसिस वल्गैरिस एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सोराइसिस प्रेजेंट इन अबाउट 80-90% ऑफ द पेशेंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है अक्यूट गटेट सोराइसिस, लाइक एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, अनस्टेबल सोराइसिस एंड एटिपिकल फॉर्म ऑफ सोराइसिस। ये इसी क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजी। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एज जो है ना हम इसको डिवाइड करते हैं सोराइसिस ऑफ द चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, जैसे हमने कहा कि टाइप वन और टाइप टू में होता है। फिर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो लीनियर और सेगमेंटल सोराइसिस में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स विच एग्जेसिवेटेड फोटो एग्रीवेटेड सोराइसिस, ड्रग इंड्यूस्ड एग्जेसिवेटेड सोराइसिस एंड एचआईवी इंड्यूस्ड या फिर एग्रीवेटेड या एग्जेसिवेटेड सोराइसिस। फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइट हम इसको जो है ना क्लासिफाई करते हैं। सबसे इसकी सबसे ईजी क्लासिफिकेशन है, अगर स्कैल्प है तो स्कैल्प सोराइसिस, फॉलिक्यूलर सोराइसिस, सिबोरिक सोराइसिस जिसको हम सिबो सोराइसिस भी कहते हैं जो सिबोरिक एरियाज पे आता है। फिर हमारे पास आता है फ्लेक्जरल सोराइसिस जिसको हम इन्वर्स सोराइसिस भी कहते हैं, जेनाइटल सोराइसिस, नेल सोराइसिस, म्यूकोजल सोराइसिस, ऑक्यूलर सोराइसिस एंड नॉन पस्चुलर पामोप्लांटर सोराइसिस। देन फिर हमने कहा कि कुछ टाइप ऑफ सोराइसिस ऐसे होते हैं ना जो इनहेरिटेड होते हैं, तो उसमें हमें जीन भी पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो जीनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनहेरिटेड केसेस होते हैं ना वो है SOR1, PSOR S1, SOR S1 जीन है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 6p। फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोराइसिस होता है या इंड्यूस होता है या एग्जेसिवेट होता है। अब हमें पता है जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं ना सोराइसिस की, हम उस पेशेंट से कहते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, तो एक तो हमारे पास हो गया इन्फेक्शन जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और HIV। फिर उसके बाद हम पूछते हैं आपने कोई दवाइयाँ तो नहीं ली थी जिसमें हमारे पास NSAIDs है, ACE inhibitor, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी सिंथेटिक एंटी मलेरियल ड्रग्स, लिथियम और इंटरफेरॉन अल्फा, TNF-alpha, ठीक है। और इसके अलावा विदड्रॉल ऑफ सोराइसिस भी जो कभी कभी रिबाउंड फिनोमेना करके अनस्टेबल सोराइसिस या स्पेशली पस्चुलर सोराइसिस में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि सडनली जब स्टीरॉइड्स को स्टॉप किया जाता है ना या विदड्रॉ किया जाता है तो उससे भी होता है। फिर उसके बाद ना अल्कोहल है, अल्कोहल टेक ऑब्वियसली इसको एग्जेसिवेट करेगा। जो क्रॉनिक स्मोकिंग है ना या सिगरेट स्मोकिंग है, एक तो इसकी एसोसिएशन है विद द सोराइसिस और इसके अलावा इट कॉजेज सीवियर सोराइसिस, सोराइटिक आर्थराइटिस और पामोप्लांटर पस्चुलोसिस, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, हमें पता है कि इसका एक विशेष साइकिल होता है कि जब स्ट्रेस होता है उसके सोराइसिस इंड्यूस एक्सेसिवेट होता है और सीवियर डिजीज़ की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस होता है और ये और ज़्यादा सोराइसिस को एक्सेसिवेट करता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है सनशाइन या फिर यूवी और एक्सपोजर। तो ये क्या करता है कि कभी कभी तो हम फोटोथेरेपी, वैसे हम देते हैं ना प्यूवा थेरेपी, इसकी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में अबाउट 5-20% केसेस के अंदर जो फोटोथेरेपी है ना या प्यूवा या यूवीआर एक्सपोजर या सनलाइट, इट कॉज एक्सेसिवेशन ऑफ द डिजीज़ को फोटो एग्रीवेटेड सोराइसिस हम कहते हैं एंड इट कंप्राइजेस ओनली 5-20% ऑफ द पेशेंट। तो उसके अंदर जो है ना सोराइसिस वाली फीचर्स भी होंगे और पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन टाइप फीचर्स भी होंगे, जो PLE वाली लेशंस जो है ना वो जहाँ पे आ रहे होंगे उसके अंदर कॉर्बिनर फिनोमेना भी हमें नज़र आएगा, जो कि अबनर फिनोमेना है ना, इट इज़ अ फीचर ऑफ सोराइसिस। फिर उसके बाद हमारे पास है फिजिकल ट्रॉमा। जो आज वाली पेशेंट थी ना हमारी, वो भी ये हिस्ट्री दे रही थी कि जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे नए लेशंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ट्रॉमा इंड्यूस्ड जो नए लेशंस बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्बिनर फिनोमेना या कॉर्बिनराइजेशन प्रेजेंट इन 25% ऑफ द पेशेंट्स।